جب کبیر صاحب نے گرو نانک دیو جی کو پٹڑی پر بٹھا دیا گرو نانک روپ بنا کے، تب آدنی نانک جی نے کہا کہ جندہ اب میں تیری بات ساری سنوں گا، اب بتا مجھے کیا کہنا چاہتے ہو. پھر پرارمبھ کری وہ سرشتی رچنا اور بتایا کہ تم کال کے جال میں پھنس گئے پیاری آتما، وہ پرماتما سچ کھنڈ میں ہے اور وہ میں ہی ہوں. اب گرو نانک دیو جی نے کہا کہ اپنی آنکھاں ویکھوں تو ست مانو، بن آنکھاں ویکھوں میں مانو کو نہ. ابھی تک تو ہم گیتا جی کے اندر لکھے ہوئے اوم نام کے منتر کو ست مانتے ہوئے اور ایک نراکار اونکار کو ست مان رہے تھے، اور آپ کی باتوں کو کیونکہ شاستروں میں مجھے ست نہیں نظر آ رہی، آنکھوں دیکھو تو میں مانو. تو کبیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. کبیر صاحب نے کہا کہ اس کیول اونکار منتر سے بات نہیں بنے، اس اونکار کے ساتھ ایک نام اور ملے گا اپنے، یہ دونوں مل کر ست نام بنے گا. اس اوم نام کے جاپ سے یہاں کی سویدھائیں پراپت ہوتی ہیں، مکتی نہیں ہو سکتی، سورگ مہا سورگ راجا پردا یہ سب کچھ بنتے رہو گے، اندر کبیر اس کی پدوی تک بھی پراپت کر سکتے ہو، پربھو نہیں مل سکتا. پربھو تو وہ کبیر پرمیشور ہے، وہ ملے ہی نہیں، اور کال کسی کو درشن نہیں دے کیونکہ یہ تو ایک لاکھ جیوں کو روز کھاوے. اور اس اونکار کے ساتھ ایک نام اور لگتا ہے، اوم منتر کے ساتھ ایک نام اور لگتا ہے، اور اس کے بعد ایک منتر اور ملے گا، یہ دونوں مل کر یعنی اوم کا اوم منتر اور ایک اور منتر جو پربرم کا ہے، یہ دونوں مل کر ستنام کہلاتے ہیں، اور ستنام ملے گا تو آپ کا یہاں سے چھٹکارا ہوگا. ستنام ملنے کے بعد پھر ایک سار نام ملے گا، اور سار نام پراپتی کر کے ہی آپ یہاں سے پار ہو سکتے ہو. کبیر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو وہ سچ کھنڈ دکھاتا ہوں. گرو نانک دیو جی کی آتما کو لے کے اور سچ کھنڈ پہنچے، نیچے برما وشنو مہیش یہ سب دکھائے، جہاں پر اچھی بھکتی کرنے والے سنت پہنچے ہوئے ہیں، کوئی راجہ وہاں پر کوئی اندر بنا ہے، کوئی کچھ بنا ہے، وہاں نرک میں بھوگ رہے ہیں، کوئی مرنے کی تیاری کر رہے ہیں وہاں پر، جو سرک سے جانے کا جن کا سمے پورا ہو گیا، ان کی آنکھوں آنسو پڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب مجھے نرک جانا ہوگا. یہ سب کچھ ویوستھا دکھا کے پھر کال کا وہ ستھان دکھا جہاں پر ایک لاکھ جیوں کو یہ یہ کال بھون کا کھاتا ہے. اس کے بعد اپنے پاربرم کا لوک پار کر کے ست لوک لے گئے. سچ کھنڈ میں جا کر کے گرو نانک دیو جی نے کیا دیکھا کہ ایک پرماتما وہ پورن پرش ست پرک وہ سبت سروپی رام وہ اکال مورت تکت کے اوپر بیٹھا، اور اتنا تیز جیسے ایک روم کوپ میں کہ اتنی روشنی کہ کروڑ سوریا ملا دے، اتنے پل چند کھلوئی، اتنے ہی چندرما ملا دے، پھر ان کی ملی جلی جو روشنی ہوئے وہ بھی ایک روم کوپ کے پرکاش کے سامنے پھیکی پڑ جا. اتنا سندر تیز ہو میں شریر اس ست پرش کا جو تخت پر بیٹھا، جس نے چھ دن میں سرشتی رچی، ساتویں دن وہاں پر تخت پر وراجمان ہوئے. اب جو نیچے سے جندہ کے روپ میں کبیر صاحب گرو نانک دیو جی کی آتما کو ساتھ لے گئے تھے، اوپر جا کر کے سوئم چور کر رہے ہیں. کبیر صاحب جندہ والے روپ میں اپنے دوسرے روپ پہ ایسے چور کرنے لگے، تو شری نانک دیو جی نے سوچا کہ یہ ہے رب، اے بیٹھا تکت تے، اور اے جڑا کبیر ہے یہ یہاں کا کوئی سیوک ہونا، انوچر ہونا. اتنا سوچ ہی رہے تھے، ایسی لیلا کرتے ہیں پربھو. اسی سمے وہ تیزوں میں روپ کھڑا ہوا، اور سم وہاں تکت پر وہ جندہ والا روپ وراجمان ہوا، اور وہ تیزوں میں شریر جو دوسرا روپ دکھا تھا وہ سور کر رہا تھا. اب نانک دیو جی سوچے ہیں کہ یہ کیا کہانی بن گئی، رب کھڑا ہو گیا، یہ سیوک بیٹھ گیا، یہ مہاتما بیٹھ گیا تکت پہ. اتنے میں وہ تیزوں میں شریر کبیر صاحب میں پرویش کر گیا جندہ والے روپ میں، اور چور سویم گھوم رہا اپنے آپ اوپر، جیسے گریب داس جی کے ساتھ لیلا ہوئی، جیسے دھرم داس جی کے ساتھ ہوئی، اور جیسے رامانند جی کے ساتھ ہوئی، ایسے ہی سے پیاری آتما گرو نانک دیو جی کے ساتھ کبیر پرمیشور نے وہی لیلا دکھا کے اپنے سوروپ کا درشن کرایا. اب چور ایسے گھوم رہا ہے اور نانک جی سوچ رہے ہیں یو کہ بھائی ये जिंदा भगवान है वो तेरे की मेरे साथ तो रवि पहुंच गए थे वहां पर, कितने अच्छे मेरे भाग गए, मेरे को प्रभु लेने गए, मेरे भगवान मुझे लेने गए। अब प्यारी आत्मा जैसे सर्प को मणि मिल जा और फिर वो छीन नहीं जा उसने, पागल हो जा सर मार मार के पटक पटक कर सर्प मर जाता, जैसे उसको वो मणि ना मिलते है। कबीर साहब ने कहा था कि गुरु नानक देव वापस जाओ अपनी आत्मा में और मैं काशी में धानक का काम करता हूँ जुलाई का, और रामानंद जी मेरे से गुरुदेव हैं और वहां जाना, सच्चा नाम मिलेगा, अकेले ओंकार मंत्र तो बात बने कोई ना। अब जिसको भक्ति की कसक है वो चूक क्या नहीं करते, सारा जीवन मनुष्य का केवल प्रभु पाने के लिए, और इसमें भी कोई पिछड़ जाता पीछे रहता है तो उस जैसा दादा नहीं, लेकिन वो प्यारी आत्मा है जिनको प्रभु की तलाश हो वो नहीं रुका करती, वो तो अपना ना तो वो मजहब देखा करती ना वो कोई लोकलाज कराया करती, उन्होंने अपना भविष्य देखना होता है। उधर से क्या होता है, इस प्रोसीजर में 3 दिन और 3 रात लग गई, 3 दिन और 3 रात लग गई। उधर क्या होता है कि बेई नदी पर स्नान करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि नानक देव ने नानक जी ने डुबकी लगाई थी स्नान करने के लिए बेई नदी में, और काफी देर जब बाहर नहीं आए तो सेवक ने कहा कि नानक देव डूब गए, नानक जी डूब गए, सब ने देखा, काफी देर देखा नहीं वो ऊपर आए, गोता खाओ ढूंढना चाह, फिर भाग कर एक व्यक्ति नगर में आए, वहां से भैया जयराम जी जो गुरु नानक देव जी के बहन हुई थे वो भी और काफी गोताखोरों खोरों को साथ लेकर जाल लेकर के काफी 3-3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था पानी बह रहा था उधर जाकर ढूंढे पर कहीं नहीं मिला, और सब ने बड़ा दुख हुआ और सब रो रो कर रुदन मचावे, ये परमात्मा ये क्या बना, इतनी प्यारी आत्मा इतनी भगवान आत्मा और इनकी बहन तो रो रो कर मर जाएगी अपने भैया के लिए, ये क्या हुआ दाता। 3 दिन तक ऐसा बुरा हाल होता रहा सारी नगरी में। तीसरे दिन वही नानक जी सतलोक से वापस आके सचखंड से वापस आके और उसी बेई नदी के किनारे उसी स्नान करने के समय वहां आके उपस्थित हो गए, बैठ गए। स्नान करने वालों ने देखा कि नानक जी तो जीवित है तो मरे नहीं, सब इकट्ठे हो गए, उनको प्यार दे में आप कैसे कहाँ चले गए थे कैसे बच गए, भागकर गांव नगर में आए, वहां से उनके भैया को बहनोई को बहन को पता चला, सब भाग्य आए और गुरु नानक देव जी को घर ले गए। घर जाने के बाद उसने पूछा आप कहाँ चले गए थे, कहने लगे मैं सचखंड गया था, मेरा भगवान मुझे लेकर गया था, मेरा प्रभु मुझे सचखंड दिखा के मुझे वापिस छोड़ गया, अब उसकी तलाश करूंगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए मोदी खाने में और वहां जाकर के 13-13 करके और जो मांगे वो ले जा सब खजाना लुटा दिया और जाकर के शमशान घाट पर बैठ गए अपना मायूस से होके, क्योंकि जिनको तलाश है प्रभु की वो तो बस वही जाने उनको कितनी चाह और तड़प होती है, सब जीवन सारा संसार असार नजर आता है उन भक्त आत्माओं को जिनको अपने मालिक की तलाश है, और जो लीला करते हैं वो गुटी लावे दारू पीवे स्वयं मांस खा जाए वो प्रभु नहीं पा सकते, 7 जन भी वो तो नाटक कर रहे हैं और सुल्फा पीवे बीड़ी पीवे और कोई गुरु बन जा कहते कैसा ही गुरु हो बस बेड़ा पार उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब वो प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी शमशान घाट पर जाकर बैठ गई, उधर से लोगों ने शिकायत की राजा को कि आपका बोधी खाना लुटा दिया, आपके नौक आपके सेवक ने और बोधी खाना लुटा दिया। उधर से गुरु नानक देव जी के बहन हुई जयराम जी को श्री जयराम जी को राजा ने नवाब ने बुलाया सुल्तानपुर के नवाब ने और कहा कि आपने ही नानक जी को यह नौकरी लगवाया था और आपके सामने खजाने की पड़ताल करेंगे, यदि इसमें जितना भी कमी पाई तो आपसे ले लेंगे हम, आप इनके जमानती हैं। भैया जयराम जी के सामने मोदी खाने की सारी जांच हुई। कहते हैं 760 रुपए गुरु नानक देव जी के फालतू निकले उस खजाने के अंदर, राजा का पूरा हो गए। अब इस बात के ऊपर सुल्तानपुर के नवाब ने बड़ा अफसोस किया कि कहा कि मैंने उस प्यारी आत्मा, पुण्य आत्मा, भक्त आत्मा पर शक किया, मत पाप का भागी हो गया। और अपने सेवक बेचे नौकरों से कहा कि हाथ जोड़ के बुला के लाओ उसको, गुरु नानक देव जी को बुला ले। और नवाब ने कहा कि भक्त जी मेरे से गलती होगी, मैंने आप पर शक किया और ये 760 रुपये आपके ज्यादा हैं, आप ले लो आपके। कहने लगे अब नहीं लेंगे कुछ भी। और फिर ये नवाब ने कहा था कि 760 रुपये आपने रख लो और फिर नौकरी पर आ जाओ। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे अब तो सच्चे बादशाह की नौकरी करेंगे, और नौकरी मेरे तो हो को ना। अब मुझे आदेश हुआ सच्चे बादशाह का, उस पूर्ण परमात्मा का, के सारे संसार में पहले तो उसकी तलाश करूंगा, वो यहीं आया हुआ है कहीं संसार में रहता है, और वो जैसे आदेश करेंगे दास वैसे करेगा। उस सुल्तानपुर के नवाब ने पूछा कि कब आदेश किया तेरे भगवान ने ये कि सच्ची सरकार की नौकरी करने का, प्रभु की तलाश करने का, भक्ति करने का, कि जब मैं बेई नदी में स्नान करने गया था वहां से मुझे सचखंड लेकर गए थे और मैं सब संसार को समझ चुका हूँ, यहाँ पर ये जीवन कुछ नहीं है, तो सच्चे बादशाह की तलाश करूंगा और सचखंड में वास करूंगा। ऐसा करके वहां से घर छोड़कर अपने घर न आगे, वहां सब नौकरी त्याग कर वो अपने माता पिता से कहा, उनको भी समझाना चाहा कि कोई सचखंड में सतलोक में परमात्मा रहता है, उसकी तलाश करूंगा। वहां से पहली उदासी गुरु नानक देव जी ने बनारस की और ये शक नहीं हुआ, उनको ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो परमात्मा और काशी में और वो दानक बनकर वो कैसे आगे होंगे, कहीं वैसे लीला कर रहे हो, मेरे को वैसे कह दिया हो। पर ये बात सोचकर कि उनको झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी, अपने मन में असमंजस सा बनाकर पहली उदासी बनारस की और रस्ते में जहां भी संत कोई दिखे, कोई डेरा मिले, कोई जैसे कहीं बहुत चर्चित संत मिले वहां जाकर बात करे, बात करते थे, चर्चा करते थे प्रभु की। इस उद्देश्य से करते थे कि यदि सचखंड का मार्ग बताने वाला यहाँ पर कोई व्यक्ति मिल गया तो वो जरूर उपदेशी होगा उस संत का जो सतलोक मुझे लेकर गया है, यहाँ आया हुआ होगा तो अवश्य उसने प्रचार किया होगा कोई सचखंड है, सतलोक है, पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें से ऊपर की कोई शक्ति और है, ये भगवान नहीं है जिनको हम प्रभु मान रहे थे। ऐसी चर्चा करते करते उनको कहीं जिक्र नहीं मिला, यही ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण तक का ही ज्ञान होता रहा। इस उद्देश्य से कि काशी में रामानंद जी से बात करूंगा, अगर उन्होंने ये बात मेरी प्रसन्न जो मैं करूंगा इनका उत्तर दिया तो अवश्य वो परमात्मा वहां होगा। ऐसे चलते चलते काशी पहुंचे, कहां पंजाब, कहां पाकिस्तान में तलवंडी और कहां ये बनारस, ये परमात्मा सिरदर की बाजी लगा देते हैं जिनको प्रभु की तलाश है। घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए और समाज छोड़ दिया, जो पुछली पूजाएं थी वो त्याग दी। अगर प्रभु चा पाना है तो एक कर, मन एक कर जैसा एक ही तरफ लगना होगा। वहां से चलते चलते काशी पहुंचे, बनारस में जाकर वहां पूछा कि कोई रामानंद नाम का संत है, वहां तो बहुत चर्चित संत थे वो, बहुत सारी काशी में उनका बोलबाला था, लेकिन कबीर साहब ने उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, उसके बाद रामानंद जी जो अपना ज्ञान, अपने ज्ञान पर आधारित थे उसको भूल गए थे और केवल सतलोक की और सचखंड की पूर्ण परमात्मा की चर्चा किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने रामानंद जी के पास जाकर पूछा, ये प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है। रामानंद जी ने बता दिया, क्योंकि वो अभी कबीर साहब के ज्ञान से युक्त हो चुके थे, परिपूर्ण हो चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीन लोक के प्रभु हैं, ये तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक प्रांत में व्यवहारिक मंत्री जैसे, लेकिन ये पूर्ण शक्तिशाली नहीं है, ये भी जन्म मरण के अंदर है और पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में है और वो यहीं आया हुआ है आजकल काशी में, और कबीर नाम है उसका, और मैंने भी पहले तो मैं उनका गुरु था, अब मैंने वो अपने गुरु बना रखे हैं। रामानंद जी ने ये बात कही, फिर तो गुरु नानक देव जी की आंखों में पानी पड़ा है कि यही है वो जुलाहा रूप में आए हैं, कहां जुलाहे का काम करते यहीं रहते हैं, कबीर नाम उनका। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो। रामानंद जी ने कहा कि आज तो यहाँ नहीं आएंगे, कल मुझे कहकर गए थे कि महाराज जी कल मैं नहीं आऊंगा, मेरा वहाँ काफी कार्य है आज कपड़ा बुनने का, कल आऊंगा दाता आपके दर्शन के लिए। ऐसा कबीर साहब जी रामानंद जी को कहकर गए थे। रामानंद जी ने कहा था कि आप तो कुल मालिक हो, मुझे शर्मिंदा करते हो बार बार ऐसा अधीनपना दिखा के। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे वहां भेज दो। अब जिसको तड़प हो ना भूख रोटियों की, वो जहाँ मिला वही जाता है। तो कहाँ से चलकर इतनी दूर आ चुका हूँ तो सोचा कि 10 कदम और चल पड़ता हूँ प्रभु की तलाश में। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया कि जाओ कबीर परमेश्वर के पास, ये बहुत दूर से भगत जी आए हैं लाहौर से के आसपास से, और प्यार से वहां ले जाओ। रामानंद जी ने कहा था पहले खाना खा लो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस जो भूख है मुझे पहले वो मेरी मिटेगी तो मैं खाना खाऊंगा। उस सेवक के साथ गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर, जहां पर कपड़ा बुने थे बैठे बैठे, और आंखों में पानी भर गए और रो रो कर जब देखी वह सूरत जो सतलोक में देखी थी, जब भी नदी पर देखी थी, और वही वहां पर एक कपड़े धारक रूप में काम कर रही थी, आंखों में पानी, जैसे भीलनी श्री राम को देखकर रो रही थी, उसको मालूम नहीं तू कहाँ खड़ी है। ऐसे काफी देर तक कबीर परमेश्वर को देख करके और बार बार देख रहे हैं कि ये वही परमेश्वर, और देख कहाँ बैठे सारी सृष्टि के रचनहार सर्वशक्तिमान, और क्या लीला कर रहे हैं। ओए होए, अपने आप को गुरु नानक देव जी बड़ा बुरा बुला कह रहे हैं कि मैं तो नीच आत्मा था, देखी से भगवान को मैंने क्या क्या कहा कि तो नीच है कमीना है, ये क्या जाने मूर्ख गंवार है। ये तो उस उद्देश्य से अपने आप को इतना लताड़ रहे हैं कि अक्षमा करना मालिक, मैंने आपको ना जाने के कह दिया, अमन जान आत्मा आपकी लीला को के जान सके। तो उस समय कहा था एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाले में, राग श्री महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पृष्ठ नंबर पे और पौड़ी नंबर यानी शब्द नंबर 29 है। उसमें कहा है गुरुदेव नानक देव जी ने अपने भगवान को देख के देख परमात्मा ने भूल के हम कहाँ घूम रहे थे। एक समान दोई सवानी नाल बल्के भौकाई सदा बियाल, ये कोड़ छोरा मूठा मरदार धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान, ओए होए हमारे तो ये एक समान दोई सवानी, एक ये मन रूपी कुत्ता और आशा तृष्णा रूपी ये दो कुतिया इसके साथ हमेशा लगी रहती है संसारिक धंधों में, यही पर मर जाती है, और ये भौंक भौंक भौंकती रहती है सदा बयाल, अर्थात ये आशा तृष्णा जीव की खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी तार, दूसरी होती है तीसरी तार, ऐसे इसको सदा बयाल यानी हमेशा ब्याने वाली हर समय और नई नई उमंग उठती रहती है, और कोड़ छुरा मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार। हमारा भक्ति का मार्ग तो झूठा था, कोड़ छुरा और मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार, हम सच्ची भक्ति नहीं मिली हुई थी। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। ए मालिक तेरा एक सच्चा नाम सतनाम सारे संसार ने तार दे, और मैं इसी आस पर इसी आधार पर तेरे पास आया हूँ। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, और काम क्रोध तन वसे चंडार, ये धानक रूप रहा करतार। ये बैठा दुल्हा भगवान, और तेरे की दुनिया कहाँ घूम रही है। फाही सूरत मलुक की वेश, फाही सूरत, ओए वो है सूरत प्यारी प्यारी जो सतलोक में सचखंड में बेई नदी पर देखी थी, सतलोक में देखी थी, वहाँ पर ये जिंदा रूप में थे, और यहाँ पर ये यूपी की वेशभूषा में यानी धोती कुर्ता सिर पर टोपी آئی سورت ملک کی ویس، اس ملک کے آدھار پر آپ دوسرا ویس بنا رکھا، سورت وہی وائے سورت ملک کی ویس، اے ٹھگواڑا ٹھگی دیس، جیسے پیار میں رویا کرتے ہیں اور آنکھوں میں پانی پڑتے، پیارے سے پیارے آدمی کی طرف روک ہے، انہوں کہ ٹھگ کہا گیا تھا تو روتے ہوئے جس کو پیار سے رو کر کے اور تھوڑا تھوڑا ملال سا بھی کر رہے ہیں، کہتے اے ٹھگواڑا ٹھگی تھے دیس اور کھڑا سیاح بہتے بارے، ہوئے ہوئے یہ دانک روپ رہا کرتا رہے. پھائی سورت ملک کی ویس، اے ٹھگواڑا ٹھگی دیس، کھرا سیاح بہتے بارے اور دھانک روپ رہا کرتا رہے. اپنے آپ کو کتنا ونمر کرتے ہیں گرو نانک دیو جی. دیکھو بھکتی تو ایسے بنے گی بھائی، کوئی بھی ہو چاہے کسی مذہب جاتی سے ہم آج سمبندھت ہیں، لیکن ونمر ہونا پڑے گا. ان سنتوں سے ہم نے یہ لینا پڑے گا ادھارن کہ پربھو پانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کتنا ونمر کر دیا. روئی بھی شاید کرڑی ہو، روئی میں بھی سخت بنا پا جا، پر اس بھکت میں، اس سنت میں جو پربھو کی تلاش میں، اس میں کرڑا پن نہیں پاؤ گا. اور جس کے اندر اہنکار ابھیمان بڑھ دیں گے، کٹ دیں گے، یہ کر دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کائے کے بھگت ہوئے، پھر وہ کائے کے مذہب ہوئے ان کے. کیا کہتے ہیں، یہ سیکھنا چاہیے ہم نے ان پیاری آتماؤں سے، ان مہاپرشوں نے ہمیں کے ادھارن دیا، اپنے آپ کو کتنا لتاڑا کہ میں نے بھگوان کے سامنے کے بات کہی، میرے جیسا گھٹیا انسان نہیں، اپنے آپ کو اتنا ونمر کا کیا ہے. ایسا ہی غریب داس جی کہتے ہیں، میں باندھی کا جام غلام 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 ہوں اور کھڑا رہوں دربار سے اٹھو یا ہوں، اے مالک میں تو آپ کا غلاموں کا بھی غلاموں کا بھی غلام ہوں، آپ نے مہر کر دی ہمارے جیسے تتمدی جیو کے اوپر. ایسے ہی گرو نانک دیو جی کہہ رہے ہیں کہ میں کیتا نہ جاتا حرام خور، کچھ کرن دن کے بھی نہ تھے، اپنے آپ میں سیاڑے گڑے ہو گئے تھے، اپنے آپ میں ودوان بنیا پھروں تھا. گرو نانک دیو جی کہہ رہے ہیں میں کھرا سیاح، میں کیتا نہ جاتا حرام خور، او کیا منہ دیسا دشٹ چور، اور نانک نیچ کہے بیچار یہ دھانک روپ رہا کرتا. اب یہ پرمان آپ کو گرو گرنتھ صاحب کے اندر دکھاتا ہوں، دیکھیے گا. شری گرو گرنتھ صاحب جی، اب اس کے اندر آپ کو پرشن نمبر 24 پر شری راگ مہلا پہلا یہ سب دکھائیں گے پنجابی کے اندر لکھا ہوا. اب یہ دیکھیے گا شری گرو گرنتھ صاحب جی پرشن نمبر 24 پہ راگ شری، یہ ہے شری راگ مہلا پہلا گھر چار، یہ 28 نمبر سماپت ہو جاتا، شبد 29 میں پرارمب ہوتا ہے. یہاں دیکھیے گا، ایک سوان دوئی سوانی نال بلکے بھکا ہی سدا بیال، کوڑ چھرا موٹھ مردار، یہ دھانک، یہ دیکھو دھانک روپ رہا کرتا رہے. میں پت کی پند نہ کرنے کی کار، وہ بگڑ روپ رہا بکرال، تیرا ایک نام تارے سنسارے، ہوئے ہوئے ہوئے، تیرا ایک نام تارے سنسار، میں ایہا آس ایہو آدھار، رہاؤ مکھ نندا آکھا دن رات، پر گھر جو ہی نیچ منات، کام کرود تن وسے چنڈال، یہ دھانک روپ رہا کرتا رہے. پھاہی صورت وہ صورت، پھاہی صورت دیکھو ملک کی ویس، او ٹھگواڑا ٹھگی دیس، کھرا سیاح بہتا بھار، دھانک روپ رہا کرتا رہے، یہ دھانک روپ رہا کرتا رہے. میں کیتا نے جاتا حرام خور، او کیا دوست منہ دیسا دوست چور، نانک نیچ کہے بچار، یہ دھانک روپ رہا کرتا رہے، دھانک روپ رہا کرتا رہے. بتاؤ پھر دیکھ لیجئے، میں کیتا نے جاتا حرام خور، او کیا منہ دیسا دشٹ چور، نانک نیچ کہے وچار، یہ بیچار، دیکھو بیچار بولا ہے، وچار کو پنجابی میں بے بولتے ہیں، اور یہی پھر کبیر بے کو کبیر لکھا جاتا ہے، بے بولا جاتا ہے. نانک نیچ کہے بیچار، یہ دھانک روپ رہا کرتا رہے، دھانک روپ رہا کرتا رہے. अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जहाँ सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहाँ से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए, रहाउ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेश, दस्तम गीर आखिर व्यप्तम कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल, बद बखत हमचो बखील गाफिल, बे नजर बेबाक नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल पाखाक। चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा ये हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने सबदारा, हक्का कबीर बिल्कुल सब लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अभी भक्त समाज ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। आपने जो प्रश्न नंबर 721 पर जो शब्द सुना देखा उसको सुनिए, एक अर्ज गुप्तम पेश दोतर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम, मेरी एक आपके चरणों में एक अर्ज है दाता, एक गोस दर गोस कून करतार, गोस होते हैं जिंदा फकीर, कून करतार है कुल मालिक, आपके चरणों में मेरी एक अर्ज है, एक कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ए सत कबीर तू ही करीम दयालु है, बे ऐब परवरदिगार तू ही वो वास्तव में नीव निर्विकार परमात्मा है। दुनिया मुकामे फानी दिल तहकीक दिलदानी, ये दुनिया तो नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी नाशवान है, ये तो मेरा पक्की जचगी। तहकीक दिलदानी मम सर मुई, इस शरीर के छूटने पर है, अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी, एक इजराइल नाम का देव, अजराइल नाम का फरिश्ता और बेरहमी से इस जीव को पकड़ के ले जाएगा। जन पिसर पदर बिरादरा कसनेश दस्तमगीर, ना तो कोई भाई काम आवे, ना कोई बहन, ना कोई भाईचारा, نہ کوئی رشتے داری نہ مذہب ساتھ دے گا جب یہ پکڑ کے لے جائے گا، آپ کے چرنوں میں سیس ہے میرا۔ آخر بفتم کس ندارت جو سب تکبیر، کوئی بھی میری جو انسان کی اپنی کوئی بھی تکبیر، تکبیر مانے کوئی بھی کریا، کوئی بھی بچاؤ کام نہیں کرے گا اس سمے، اس میں تو کیول پرماتما کا سچا نام اسی کا جاپ کام کرے گا۔ سب روز گستم درہاب کر دیں بدی خیال، جیسے ہوا جیسے سینی گشت کرتے ہیں ایسے ہر سمے یہ چلنے والے، ہوا جیسے چل رہی ہوتی ہے رکتی نہیں، ایسے ہمارے من میں یہ اچھے وچار چلتے ہی رہتے ہیں، آپ کے دیا بنا یہ رک نہیں سکتے۔ سب روز گستم در ہوا کردم بدی خیال، گاہے نہ نیکی کر کردم، گاہے نہ نیکی کار، کوئی بھی اچھے کرم ہم نہیں کر پائے، کردم مئی مم ای چینی احوال، بد بخت ہم جو امچو وکیل، ایسے گھٹیا سطر سمے پہ اسے گور کلیوگ میں آپ نے کیسے دیا کری، ہمارے جیسے غافل بے نظر بے باک وکیل، غافل مستی میں گھوم رہے تھے اپنے اسی کریا کو، بچوں کی پرورش اپنا جیسا بھی دھندا اسی میں مست تھے، اسی میں غافل ہو رہے تھے یعنی مست تھے، اور بے نظر بے باک، بے نظر مانے اندھے گیانہین تھے، ہم تو اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے تھے گیانوان پر ہمارے پاس گیان نہیں تھا داتا، بے باک مانے گونگے تھے ہم تے، آپ کے سامنے آپ کے گیان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یہ سنت آج تک کے۔ نانک بگویت جنترا ترا اور تیرے چاکرا پاکھاک، آپ کے چرنوں کی دھول آپ کا سیوک، تیرے چرنا تیرا چاک تیرے چاکرا پاکھاک، پاکا پاکھاک مانے پاؤں کی دھول، ارتھات وہ منس روپ میں پرمیشور کبیر صاحب آ کر کے اپنی پیاری آتما کو کال سے جال سے نکال کے اور سچ کنڈ لے گئے، سچا نام دے کے، جس میں گرو نانک دیو جی کو کبیر صاحب کا ملن ہوا، یہ سمکالین تھے۔ اب کئی بھکتاتما ایسے اپنے منمانی شنکائیں کر لیتے ہیں، کبیر گرو نانک دیو جی کا جنم وکرمی سمت 1526 کارتک سدھی پورنیما کو ہوا، وکرمی سمت 1526 سن 1469، اور کبیر پرمیشور کا اوترن ستلوک سے آگمن کاسی میں کمل کے پھول پہ وکرمی سمت 1455، اور 1575 تک وکرمی سمت 1575 تک یہ منو شریر دکھا کر کے یہاں اپنے ست مارگ کا درشن کر کے اپنی پیاری آتماؤں کو ست مارگ بتا کے اور سچ کو ست لوک کا رستہ دے کر کے 120 برس میں چلے گئے تھے۔ 1575 تک رہے، 1526 میں گرو نانک دیو جی کا جنم ہوا، یہ سمکالین تھے۔ یہ دیکھیے گا، یہ جیون 10 گرو صاحبان، جیون 10 گرو صاحب، اور اس میں دیکھیے گا ان کے دوارا ہے، بھائی چتر سنگھ جیون سنگھ بازار مائی سیوا امرتسر، اس کے پرشن نمبر 21 پر دیکھیے گا۔ ستگرو نانک اوتار کارتک سدھی پورنیما سموت 1526 اور سن 1469، کبیر صاحب سن 1398 سے اور سن 1518 تک رہی تھی، ان کی سمکالین تھی۔ اب آگے دیکھیے گا، بیئی ندی کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیئی ندی میں پرویش، یہاں دیکھیے گا اسی کے پرشن نمبر 42 پر، یہاں دیکھیے گا، بیئی ندی میں پرویش، گرو جی پرتیک پراتہ بیئی ندی میں جو کہ شہر سلطان پور کے پاس بہتی ہے سنان کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن جب آپ نے پانی میں ڈبکی لگائی تو پھر باہر نہ آئے، کچھ سمے اپرانت آپ جی کے سیوک نے جو کپڑے پکڑ کر ندی کے کنارے بیٹھا تھا، گھر جا کر جیرام جی کو خبر سنائی کہ نانک جی ڈوب گئے، تو جیرام جی تیراکوں کو ساتھ لے کر ندی پر گئے، आप जी को बहुत ढूंढा किंतु आप नहीं मिले, पर बहुत देखने के पश्चात सब लोग अपने घर चले गए। भैया जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्त ने घर पर आकर बहन जी को बताया कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भैया जयराम जी बेई की तरफ दौड़ पड़े और जब 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 पता लगता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब वह इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आप जी चुपचाप अपनी दुकान पहुंच गए। आप जी के साथ स्त्री पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ को देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरुजी के चले जाने की खबर जब नवाब को मिली लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम जी को बुलाकर पड़ताल कराया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी जी ने बताया कि गुरुजी के 760 रुपए सरकार की तरफ अधिक हैं। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरुजी को बुलाकर कहा कि उदास ना हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से पैसा लेकर मोदी खाने का काम जारी रखें। पर गुरुजी ने कहा कि अब हमने यह काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा क्या आदेश हुआ है। गुरुजी ने ये मूल मंत्र उच्चारण किया, अकाल मूर्त एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैरु अकाल मूर्ति अजुन्नी संभय गुरु प्रसादी संभय गुरु प्रसादी। आगे देखिएगा, नवाब ने पूछा कि ये आदेश आपको भगवान ने कब किया। गुरुजी ने बताया कि जब मैं बेई नदी में स्नान करने गए थे तो वह जब हम बेई नदी में स्नान करने गए थे तो वह वहां से वह हम सचखंड अपने स्वामी के पास चले गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी यह मंत्र आप जपो, बाकियों का जाप कर कलियों के जाप कर कलियों के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ में भाई गुरदास जी वार पावड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पेंडा पैदा सचखंड नौलिद नाम गरीबी पाई। अर्थात बाबा नानक जी ने सचखंड गए, वहां आपको नौनिधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई। यहां बेई किनारे जहां गुरु जी बेई के बाहर निकलकर प्रकट हुए थे, गुरु द्वारा संत घाट द्वारा अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरु जी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। अब यहां विचार करना पड़ेगा हमने कि हमारे को अपने भी शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं, और जिस कारण से हम प्रथम बार कोई सच्चाई सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, स्वाभाविक बात होती है। अब हो सकता है भक्तात्मा ये महसूस करते होंगे कि ये संत जो है कबीर साहब को प्रभु सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है और इधर उधर के तुक्के लगा रहा है, और जैसा कि प्राण संगली के अंदर कोशिश की गई है कि कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे, क्योंकि उन्होंने जो पहली वार्ता हुई थी प्रभु के साथ गुरु नानक देव की, उसके आधार पर वाणी नोट कर ली थी। लेकिन जब कबीर साहब उनको मिले उसके बाद तो गुरु नानक देव जी ने घर त्याग दिया, बालक छोड़ दिए और गांव नगर नगर में जाकर देश विदेश में जा जाकर प्रभु की महिमा गाई और सचखंड का डंडोरा पीटा, सतलोक का मार्गदर्शन बहुत दूर तक बताया कि परमात्मा कोई और है। जिसको इस खजाने का ज्ञान हो गया वो तो पागल से हो जाते, वो संसार की परवाह नहीं करते। उस समय गुरु नानक देव जी के पिता श्री कालू राम मेहता ने भी बहुत संघर्ष किया था, कहा था तू क्या पैदा हो गया हमारे है, तूने देवता छोड़ दिए, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पूछ रहा है, तू कहाँ का भगत हो गया, मैं तो इससे अच्छा तो हमारे पुत्र ना होते तो ही अच्छा था। यानी इतना संघर्ष सहन करना पड़ा समाज का, लेकिन जिसने आंखों देख लिया वो खजाना भगवान का, वो सुना नहीं करते पर संसार की, वो ना जात देखा करते ना वो मजहब देखा करते, वो अपना कल्याण देखते हैं। दो दिन की गुजरान जगत में, जनगरानी आगरे। अब जैसा मान लीजिए पुराण संगली में कोशिश की है कि गुरु नानक देव जी के गुरुदेव, गुरु नानक देव जी कबीर साहब के गुरु थे। देखो ऐसे एक बात से तो प्रथम ये बात प्रमाणित नहीं हो सकती, ऐसे कम से कम 10 संतों के प्रमाण दूंगा आपको जिन्होंने बताया कि वो कबीर परमेश्वर हैं और वे ऐसे ही क्रिया करते हैं जैसे गुरु नानक देव जी के साथ की थी। और उनके आधार पर फिर शास्त्र बताते हैं, प्रमाण है ग्रंथों में। और बड़ी बात करके चलिए कि कबीर साहेब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे, बड़ी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने ये विचार करना चाहिए उन महापुरुषों ने हमें क्या प्रसाद दिया है, उन्होंने हमारी कैसी रहनी करनी बताई है, उन्होंने हमें क्या एक रोल करके गुरु और शिष्य का हमें क्या बताया, क्या उदाहरण दिया है कि प्रभु के पाने के लिए तन मन और धन अपना सीधा लगा देना चाहिए और उन आचरणों पर चलना चाहिए जो इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस का और शराब पीवे और सल्फा पीवे या एक दूसरे लूटर खसोटर मार डाले, कहीं नहीं लिखा। तो हम जब हम मांस खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, आत्मा दुखा रहे हैं उस प्यारी आत्मा गुरु नानक देव की, हम उनके वचनों से गिरे हुए हैं, नीचे चले गए हैं, उनकी आत्मा दुख पाओ जिन्होंने संघर्ष किया समाज के साथ, इतनी वाणी उच्चारण की जिनको पढ़ पढ़ कर आज आंखों में आंसू बहने लग जाती है। हम जाते हैं अपने स्थानों पे, इष्ट स्थानों पे, वहां पर भावना तो बहुत होती है पर असर नहीं होता। बाहर आते वही मुर्गा खा लिया, बकरे खाए, शराब पिया, लूटा खसोटी। तो ये चीजें हमने त्यागनी होंगी, एक निर्मल आत्मा बनानी पड़ेगी प्रभु पाने के लिए, इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। हमारा एक भगवान है, हम एक पिता की संतान है, हम दो नहीं है। हमारे कुछ काल ने नारे नारे करके दुश्मन बना रखा है, अब हमने एक होना पड़ेगा यदि प्रभु पाना है तो। और वो समय आ चुका है, एक अपना नाम जपो, सिख तो सिख हो जाओ। सिख का अर्थ होता है बीड़ी शराब मांस तुम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे मांस शराब तुम्बाकू आदि के। और एक समय भूखा सो जा पर किसी की आत्मा दुखा कर अपना अपने पेट पालन नहीं करे, प्रभु के दरबार में पाई पाई का हिसाब है। ऐसे ही हिंदू वो है जो बीड़ी शराब मांस तुम्बाकू ना पीवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखे और जैसा दर्द अपना हुए ऐसा जान बराने। वही मुसलमान के लक्षण है, मुसलमान वो है जो बीड़ी शराब मांस तुम्बाकू का हाथ नहीं लावे और ब्याज तक भी ना लेवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बुरी नजर से किसी बहन बेटी को नहीं देखे, चोरी ठगी नहीं करे। ऐसे ईसाई वो है जो ईसा जी के पद चिन्हों पर चले, बीड़ी शराब मांस तुम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, प्रभु का कहीं आदेश नहीं है कि मांस खाओ या कोई शराब पी लो, न को बाइबल में न कुरान शरीफ में, क्योंकि बाइबल के अंदर से आदेश शुरू हो गया सभी को कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष है, मांस नहीं लिख रखा उसमें। आगे वो काल के फरिश्ते और स्वयं काल इनको धोखा दे देकर इन भोली आत्माओं को गुमराह कर देता है, उनको भक्तिहीन कर देता है और उनके कर्म बिगड़वा देता है और फिर 84 के चक्कर में डाल देता है। हमने प्रभु का वो प्रथम आदेश मानना होगा जो पवित्र बाइबल में लिखा है और गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं मांस खाने का प्रमाण है, न शराब पीने का। यदि हम अनुयायी हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, आदर तो इतना देते हैं कि वहां मत्था टेकने जाते हैं, और ये तो इतना आदर देने योग्य वाणी है इन संतों की, आदर के अगर सिर भी दे दे इनके लिए तो वो भी थोड़ा है। लेकिन इन पर अनुसरण नहीं किया हमने इन अमृत वचनों पर, तो क्या तो वहां गुरुद्वारे में गए और क्या उस मंदिर में गए, क्या मस्जिद में गए और क्या चर्च में गए हम। तो इसलिए हमने इन वचनों को फिर शुरू करना होगा, अपने आप को वापस लाना होगा जहाँ पर हमारे संत हमारे पूर्वज हमें रखना चाहते थे, बुराइयों से बचाना चाहते थे, काल के जाल से छुटाना चाहते थे। एक समय गुरु नानक देव जी बड़े भक्ति में लीन रहते थे, संसार से उदास रहते थे, कभी मुस्कुख पर मुस्कान नहीं आती थी, यहाँ पर मुस्कान नहीं आवेगी जो सही भक्ति समझ जाएगा और जो नाचर गावर भंगड़े पावर गीत गावर गुण और नाचर गावर भक्ति सुनावे वो तो नाटक कर रहे हैं। प्रभु के नाम पर गाना और रोना चाहिए, नाचा नहीं जा सकता। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक भक्त आया और कहने गया, हे महात्मा जी, आप हमेशा ऐसे मायूस से रहते हैं, रहते हो आप खुश नहीं होते। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंस आवे। ना जाने ये काल कसाई के कर दे एक पल में, आप खुश हो रहे हैं एक मिनट में, जीवन से लहजा टांग टूट जा, बना बेरा के बन जा, कोई घटना घट जा। ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंस आवे। उस भक्त ने फिर पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आप फिर कभी खुश नहीं होते? गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं खुश होता हूँ। कब होता हूँ? कहते साध मिले साड़ी शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, अखते नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले जब मेरे कुमारे घर पे, जब मैं कभी संतों के पास जाता हूँ, संत मेरे पास मेरी प्यारी आत्मा भगत आते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, उस दिन मेरी खुशी होती है, वो हमारी शादी, शादी मैंने खुशी, संत मिले भक्त मिले संत सम्मेलन हो, वो हमारी शादी है, वो खुशी है मेरी। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये संसार के लोगों सुन लो, ये नाचना गाना बकवाद करना, बीड़ी शराब नाच तुम्हारे पीना, फिर भक्ति का नाटक करना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे, ऐसे भक्ति नहीं हुआ करती। इन संतों ने ये आदेश दिया है, इसका पालन करना होगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, घना लंबा समय नहीं मनुष्य का। आज हम मनुष्य भक्तिहीन प्राणी, फिर 84 में गधे और कुत्ते सूर की जोर नहीं पाएंगे। इससे बचाव के लिए हमारे महापुरुषों ने रह रहकर गुरु नानक देव जी के गुरुवाणी में एक बार पढ़कर देखो, आंखों में पानी नहीं सूखा इंसान की। कितना प्यार तय कितनी बार का है, सच्चे गुरु की शरणा आओ, पूरा गुरु ढूंढ लो, और वक्त जाता है, समय जाता है, फिर पछताओगे, रोओगे इस समय को, ये नहीं हाथ आएगा, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। हम संतों ने यही बताना चाहा, और हम एक वैसे नाटक सा कर रहे हैं, भक्ति का ढंग से नहीं कर रहे हैं। सब बुराई त्याग कर पूरा संत ढूंढना होगा, पूरे संत नाम लेकर फिर सिख तो सिख बनो, और मुसलमान बन जाओ मुसलमान, सब बुराई त्याग कर हिंदू हिंदू बन जाओ, और ईसाई बन जाओ ईसाई, और नाम जपो जैसे उदास बतावे उस पूर्ण परमात्मा का। गीता जी में लिखा है कि तीन नामों से बात बनेगी, प्रथम तो ओम नाम है ही है, एक ओंकार तो है ही है, इसके बिना तो हम यहाँ से छूट ही नहीं सकते। ओम नाम के जाप की कमाई, वो भी पूरे संत तक लेकर, उससे बात बनेगी। पूरे सतगुरु की शरणा जाई, गुरु ग्रंथ साहिब में 100 बार लिख रहा था, 1000 बार लिखा हुआ है, तो पूरा संत वक्त गुरु ढूंढना होगा। अब कहते हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा है, मैंने सारा ढूंढ लिया। ये तो उस महापुरुषों ने ये सोचा कि हो सके इस कलयुग में, ना जरा कितने प्रकार के ये पाखंडी संत होंगे, अपनी अपनी धारणा बनाकर अपनी अपनी पूजा बता देंगे। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में आदेश है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ, ऐसा मार्ग बताने वाला कोई संत मिले तो उसको, उस गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार जो मार्गदर्शन करने वाला संत मिले उसको ढूंढ लेना, नहीं तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब से बात नहीं बने। कैसे नहीं बने? किस इसमें खजाना दाब रखा है, लेकिन वो संकेतिक होता है। संतों की वाणी में गरीबदास जी की प्यारी आत्मा, परम पूज्य परम आदरणीय गरीबदास जी की अमृत वाणी में, आदरणीय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वाणी में, सब संतों जो कबीर साहब के संपर्क में संत आ गए, और फिर उन्होंने जो मार्गदर्शन किया वो कबीर साहब के अनुसार ही है, वो वाणी मान्य है। उसके बाद जो अन्य भी संत हैं, उन्होंने भी अपनी वाणियां लिखी, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। जहां तक उनके अनुभव है ऐसा, वो वहां तक ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं हो। तो उन्होंने हमें खजाना दाब रखा इसके अंदर, लेकिन वो सांकेतिक है, उसको वही ढूंढ कर बता सकता है जिसको सही ज्ञान होगा। एक समय की बात है कि एक सेठ की मृत्यु होगी, उसके पुत्रों ने देखा कि हमारे पिता के पास बहुत धन था, अचानक मृत्यु होगी और हमें बताकर नहीं गया। हो सकता है कहीं बही में लिखा हो, बही में लिखा पाया कि मंदिर के गुमज, गुमज माने ऊपर जो गोल गोल होया करे शिखर में, मंदिर के गुमज में 30 तोले सोना, 10 किलो चांदी और 500 रुपये वो दबा रखे और लिख रखा सारा विवरण। बच्चों ने देखा कि यहाँ ठीक है, पिताजी लिख कर गए हैं और मंदिर के गुमज में ठीक सा आराम से बाद में फोड़ेंगे, पहले इसकी अपना सारी क्रिया कर देते हैं। सब क्रिया करके उस सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था, तो रात्रि के समय उन बच्चों ने वो मंदिर तोड़ दिया। मंदिर का गुमज तोड़ा तो उसमें कुछ नहीं पाया, तो गांव वाले कहने लगे, रहने कम्यो, तुम्हारे पिताजी ने तो मंदिर बनवाया और तुमने तोड़ दिया, यो क्या किया तुमने। अब वो शर्मिंदा होकर कहते हैं, मेरे पिताजी यूं कह कर गए थे, भाई बढ़िया बनवाना इस मंदिर को दोबारा तोड़ के, हम बढ़िया बनवाओगे इसको। गांव वाले तो चुप हुए। अब उनको चिंता बनी, वो पैसे गए कहां, पिताजी झूठ बोल गए हमारे को। उस सेठ का एक दोस्त था, उसके पास गए, उस जाकर कहा कि ताऊ जी हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, वही में पैसे लिख रखे हैं लेकिन जो स्थान बताया वहां पर पाए कोई ना। वो उनके पिता का दोस्त गया, वहां जाकर के उसने देखा, वह बही देखी, बही में लिखा था कि रात्रि के 12 बजे द्वादशी चांदनी यानी सुदी द्वादशी, रात्रि के 12 बजे चांदनी रात्रि, रात्रि यानी एक तो सुदी होती है, बदी यानी चांदना पक्ष में रात्रि के द्वादशी वाले दिन रात के 12 बजे गुम्बज में पैसे दाब रखे। अब उसको सेठ जी बोला, भाई ऐसे काम करो, पहले तो ये गुम्बज ज्यों का त्यों बढ़वा दो इसका, उसके बाद बताऊंगा कहाँ दाब रखे हैं। अब उन्होंने पुत्रों ने फटाफट गुम्बज बनवा दिया, बड़ा सुंदर और अच्छा सा बनवा दिया, और कहा मैं फिर आऊंगा। वो ठीक एकादशी को, द्वादशी को पहुंचे शाम ने, और कहने लगे, भाई जहां पर वो गुम्बज की छाया जा रही थी, जहां उस मंदिर के गुम्बज की जहां छाया गई हुई थी, वहां निशान लगा दिया, बेटा यहां खोद कर देख लियो। उन्होंने खोद कर देखा तो वहां ज्यों का दो दन पाया, जो बही में लिखा हुआ था। ऐसे केवल इन ग्रंथों को के ऊपर आधारित रहने से तो हम ऐसे ही गुम्बज फोड़ते रहेंगे, वस्तु नहीं मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विध लग गए हाथ, एक पलक में पाई है बेदी ले ले साथ। ऐसे हमने संत की, वक्त गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, पर पूरे वक्त गुरु की, इन नकलियों की नहीं, जिन्हें आज तक सारा गोलमोल काम कर रखा ना। अब सत्य को किसी की थ्योरी एक नहीं मिलती, और ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं संत के, परमात्मा कबीर साहब है, वो सतलोक में रहते, वो मनुष्य जैसा है। अब घुमा फिरा कर प्रकाश और शब्द, प्रकाश और शब्द आकार क्या है, निराकार है, उसका आकार नहीं, कोई का आकार है तो प्रकाश प्रकाश है। तो ये जब इन्होंने ज्ञान ही इतना है और इतना पूरे मंत्र हैं, जैसे 3 मंत्र लिखे इनमें, इसमें सांकेतिक हैं, ओम नाम तो सीधा ही है, ये तो इसके बिना तो प्रारंभ आपका भजन यानी धार्मिक कर्म हो ही नहीं सकता। और ओम नाम के बाद फिर दूसरा नाम है सांकेतिक तत्र, ओम और एक मंत्र और मिलकर वो सतनाम बन जाता है। ये देखिएगा आपके सामने गहरी नजर, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर यहां देखिए 23 में, ओम तत् सत, ओम और ये मंत्र और मंत्र है, सीधा नहीं, ये सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। सतनाम ये सच्चा नाम बनेगा, ये सत शब्द, और फिर ये सत ये सार नाम है। ये तीनों मंत्र मिलेंगे आपको, अलग से मंत्र है उसका जाप, जैसे ओम है ऐसा ये मंत्र और है, ऐसा ये मंत्र और है, तीनों मंत्र मिलकर फिर ये एक नाम बनेगा पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध समर्थ है, पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा का भक्ति करने का ये ओम तत्, ओम और तत् और सत, ये तीन विधि का, ये तीन नाम का मंत्र स्मरण करने का आदेश है। निर्देश माने संकेत भी और आदेश भी दोनों मिले हुए होते इसमें। ब्राह्मणा माने भक्तात्मा सृष्टि के शुरू में, इसी प्रकार इसी ज्ञान के आधार पर यज्ञ आदि और यज्ञ माने धार्मिक कर्म पूजाएं किया करते थे। ये देखना है। अब जैसे कि अब क्या करते हैं सिख धर्म के अंदर, कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। गरीबदास जी जिन्होंने कबीर साहब को आंखों देखा था, उन्होंने बताया कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा जहां सतलोक का, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वो सिखों का गल पड़ी कौन छुटा बैठा। वो वह अब जैसे सतलोक में देखे ना प्रभु को, ओए हो ये है वो गुरु, ये मिला भगवान वाहे गुरु, और सच्चा नाम मिला ओंकार तो बात नहीं बना के लेते। उस ओंकार पहले कहा करते थे वो भी वाणी में नोट कर लिया गा। अब इन दोनों को मिलाकर एक ओंकार और फिर सतनाम है, ये दोनों मिल गए। उसके बाद फिर सतनाम सतनाम की रट लगाई थी गुरु नानक देव जी ने, ओंकार की नहीं लगाई थी। फिर वाहे गुरु वो है गुरु वो हो भगवान यो मिल रहा है और सच्चा नाम मिला जब यहाँ पीछा छूटे काल के जालते हैं। वहाँ काशी लाहौर से लगे थे, यानी अपनी तलवंडी से, वहाँ बे क्या नाम सुल्तानपुर से लगे थे। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम मिल रहा है। अब वहाँ से लेकर के उनके साथ जितनों के संपर्क में उन्होंने नोट कर लिया, साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकला और सब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करने लगे। अब उन्होंने तो वहाँ ऊपर का नजारा देख कर वाहे गुरु की थी, सच्चा नाम और है सतनाम, जो दूसरा वो पूर्ण संत देगा। तो गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कौन समझावे इन बोड़ी आत्माओं को, क्योंकि अनजानपने में। अब क्या होता है कि ये सच्चा नाम जो है ना, ओम के साथ एक मंत्र और मिलेगा, ये किसी को वैसे नहीं कहा जाता बार बार, ऐसे कहने से वो उसके लिए मंत्र बन जाएगा और हमारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि हम अधिकारी नहीं है जब तक नाम देने के। और अधिकारी हो जाएंगे तो भी ऐसे आम व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। अधिकारी को उसका पूरा भावना बन जावे और सच्चे दिल चाहे तब वो नाम देना पड़ता है। अगर आदेश है गुरुदेव का कि तू नाम दिया कर, तब वो नाम देवे तो उसका फलेगा, नहीं तो वो स्वयं भी बर्बाद हो जाएगा। इतना इसका सीरियस काम हो सके, इसलिए संत सीधा नहीं बताते, इसको सांकेतिक रखते हैं। तो सतनाम श्री वाहे गुरु ओ हे गुरु मिले सतना वाह गुरु ओ हो ऐसे करते हुए चल रहे थे। तो अब वो ही रट लगाने लगे। एक बार यहाँ रोहतक के अंदर एक मुझे बुजुर्ग व्यक्ति मिला, उसका नाम तो था अरोड़ा, खरेतीलाल अरोड़ा कुछ ऐसा था। तो एक मेरा सेवक ने बुलाया कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ी सेवा की है गुरुद्वारे में, काफी दिनों तक रही यहाँ रोहतक के अंदर। मैंने उनसे वार्ता की, आओ बुजुर्गो बैठो, बड़े प्यार से बात करी। मैं कहने लगा आपने गुरुद्वारे में रहते हो, कहा मैं 40 वर्ष तक सेवा करी है गुरुद्वारे की, मैंने अब जाता हूँ, अब तो मैं घर पे रहता हूँ, वर्द हो गया। मैंने कहा क्या मंत्र नाम दे रखा आपको, कहता मैंने अमृत छक्का है। मैं कहा अमृत तो छक्का है वो तो, क्योंकि कबीर साहब सबको पहले एक पेय पदार्थ के माध्यम से ही जल मंत्र देते हैं, उसको अमृत कहते हैं। हम उसको आरती चौका भी कह देते हैं, पान परवाना भी कह देते हैं, पान माने पीने की चीज पेय पदार्थ। तो वो कहता मैंने अमृत छक्का है। अच्छा जी, तो नाम क्या जपते हो, कि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम और की है। मैं कहने लगा ये तो वाहे गुरु नाम तो नहीं है जपने का गुरु ग्रंथ साहिब में, तो कोई और मंत्र है सच्चा नाम सतनाम। और मैंने उसको दिखाया प्राण संगली में कि ये लिखा हुआ वो नाम जो जपना चाहिए। वो कहने लगा ये तो साढ़े गुरुआ ने जपना सी, असी तो वाहे गुरु कोई बात हो। अब गुरु जी के पेट में दर्द हो जा, पेट के दर्द की एक जैसी गोली है, शिष्य भी वही खानी पड़ेंगे गुरु जी ने भी। अगर आपने मुक्ति पाना है, जहाज में बैठना है, गुरु जी तो जहाज में बैठे और तेल नीचे लटक गया कोई बात हो। या गुरु जी यही बताना चाहते हैं कि ये मंत्र तो बात बनेगी बेटा, यहाँ आ जाए जहाज में बैठ ले, रमजान पड़े में तुम और कहीं बैठ जाओ तो वो मार खाओगे। ऐसे हमने उस सच्चे नाम का पूरे गुरु तले के, और मान लीजिए पता भी लग जाए आपको कि ये नाम है, वैसे कोई लाग जाते हैं जिसका अधिकार भी नहीं है, वो भी व्यर्थ रहेगा। तो ऐसे ये बात बिगड़ी हुई है, इसलिए गरीबदास जी कहते हैं कौन छटा बैठा, अब कौन छटा बोली आत्मा होते, कौन समझावे, नाराज हो जाओ है? हमारे तो इतने वर्ष हो गए हम ये साधना करते हैं, जैसे हिंदू धर्म के हमने तो बहुत दिन हो गए श्राद्ध निकालते हैं, हमारे पूर्वज भी निकाला करते, वो क्या बावड़े थे? बावड़े नहीं थे, वो बोले थे, वो तो प्रभु की प्यारी आत्मा थी, वो नेक आत्मा थी, उनके हृदय में सच्चाई थी, लेकिन उनके गुरु विचक्षण थे, उनके गुरु जो मिल गए वो स्वार्थी थे, उन्होंने गलत रास्ता बता दिया। वेद गीता में लिखा है कि पितर मत पूजो, भूत मत पूजो, तुम भूत बनोगे, और उसके विपरीत साधना सारा समाज में करवाई जा रही है, और अच्छी विधि बताई जा रही है कि कर लो, ऐसा नहीं है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे श्राद्ध निकालो, और गीता मना करती है कि कभी मत करना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तक की भक्ति को गीता में मना कर रखा है, तीनों गुणों तक की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्य देवता तो पूजने नहीं। ब्रह्म काल भी कहता है मेरी पूजा अच्छी नहीं है, गीता जी के साथ में जाएगा